मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद मीना संस्कृत विभाग विक्रम विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ। महाकाल के चरणों की वंदना करते हुए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि देश में कोरोना वायरस रूपी महामारी से देश और पूरे विश्व को मुक्त करे और इस कोरोना वायरस रूपी महामारी से सबकी रक्षा करें। धन्यवाद। सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपने अपने घरों में ही रहें। धन्यवाद। पाठ्यक्रम ए में द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत CBCS पैटर्न प्रश्न पत्र का शीर्षक है काव्यशास्त्र। इस प्रश्न पत्र में पांच इकाइयों में विभाजित है। प्रथम इकाई प्रमुख काव्यशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांत। दूसरी इकाई का नाम है काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभाजित है। उनमें से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय उल्लास इकाई 2 में है। तीसरी इकाई है काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा विरचित। इसमें चतुर्थ उल्लास रस भेद पर्यंत और तीसरी इकाई में ही साहित्य दर्पण विश्वनाथ का लिखा हुआ है, इसका प्रथम परिच्छेद समाहित है। चौथी इकाई काव्य आदर्श दंडी, अर्थात काव्य आदर्श जो है वो दंडी के द्वारा विरचित है और इसका प्रथम परिच्छेद हमारे कोर्स में है। पंचम इकाई ध्वन्यालोक जो कि आनंद वर्धन आचार्य द्वारा रचित है, इसका भी प्रथम उद्योत हमारे कोर्स में है। इसकी प्रथम इकाई जो प्रमुख काव्य शास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांत है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकवि कालिदास के एक श्लोक को मैं मंगलाचरण के रूप में यहाँ उद्धृत करूँगा। वागरता विभषम प्रक्तौ वागरत प्रतिपत्तये जगतः पित्रौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। काव्यशास्त्र, तो यहाँ प्रमुख काव्य शास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांत ये इकाई का नाम है। तो काव्यशास्त्र के विषय में थोड़ा सा बताना यहाँ उचित होगा। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा अति प्राचीन है। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा प्राचीन होने के साथ साथ ही ये बहुत ही विस्तृत और समृद्धशाली है रही है। इस परंपरा का उद्भव बहुत ही प्राचीन है, यहाँ तक कि इस परंपरा को वैदिक साहित्य से ही जोड़ा जाता रहा है। वैदिक साहित्य से ही इसकी उद्भव परंपरा को माना जाता रहा है, क्योंकि वैदिक साहित्य को बड़े मनीषियों ने ज्ञान के एक बड़े उत्स के रूप में पहले से ही वर्णित किया है। वैदिक साहित्य में किसी भी साहित्यिक विधा के बीज बिंदु हम खोज सकते हैं, क्योंकि वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। वेद ज्ञान के पर्याय भी है। अब जो काव्य शास्त्र की परंपरा जो है, इस परंपरा को ये परंपरा लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस परंपरा में काव्य शास्त्र के अनेक ग्रंथों का सृजन हुआ, जिससे काव्य शास्त्र की परंपरा आज हमें बहुत ही समृद्ध रूप में देखने को मिलती है। और इस परंपरा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, काव्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा, जो कि आचार्य भरत मुनि से प्रारंभ मानी जा सकती है और भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक हम इस परंपरा को मान सकते हैं। दूसरे नंबर पर काव्य शास्त्र की आधुनिक परंपरा को माना जा सकता है, जो कि आचार्य पंडित राज जगन्नाथ से लेकर आज तक के समय में काव्य शास्त्र का जो सृजन और काव्य सिद्धांतों पर जो नवीन प्रकार से आचार्यों के विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसको हम आधुनिक परंपरा के अंतर्गत मान सकते हैं। इस परंपरा में काव्य शास्त्र के कई मानदंड काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने स्थापित किए हैं। आगे चलकर काव्य शास्त्रीय परंपरा में काव्य शास्त्र के छह सिद्धांत काव्य शास्त्र में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और इन छह सिद्धांतों की स्थापना आचार्यों के द्वारा की गई है। इन छह सिद्धांतों में सबसे पहले रस सिद्धांत की चर्चा की जाती है। तो रस सिद्धांत या रस संप्रदाय काव्य शास्त्र में बहुत बड़ा स्थान रखता है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि बहुत बड़े आचार्य हैं। दूसरा संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक आचार्य बामा है। रीति संप्रदाय तीसरा संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन हैं। इसके बाद ध्वनि संप्रदाय, ये भी काव्य शास्त्रीय क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसके संस्थापक आचार्य आनंद वर्धन है। पांचवा संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। छठा संप्रदाय औचित्य संप्रदाय है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो इस प्रकार काव्य शास्त्र की परंपरा में इन छह संप्रदायों की प्रसिद्धि विशेष रूप से देखी जा सकती है। अब काव्य शास्त्र ये जो ये सिद्धांत या जो ये संप्रदाय है, उन संप्रदायों पर बहुत विचार और बहुत विवेचन आचार्यों ने किया है और इन संप्रदायों के समर्थक या संप्रदायों से जुड़े हुए बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जो कि रस संप्रदाय को जो मानने वाले आचार्य हैं वो रस संप्रदाय को काव्य शास्त्रीय क्षेत्र में या काव्य का मूल तत्व या प्राण तत्व के रूप में मानते हैं। अन्य जो काव्य शास्त्रीय तत्व है उनको भी वो गौण रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जो जो आचार्य जिस संप्रदाय को के समर्थक या मानने वाले हैं वे उस तत्व को ही काव्य में प्रतिष्ठित तत्व के रूप में मान्यता देते हैं। इसी प्रकार अलंकार संप्रदाय में भी यही है कि जो आचार्य अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामहा हैं और उनका जो समर्थन करते हैं वो काव्य शास्त्र में अलंकार को ही विशेष रूप से महत्व देते हैं और उसे ही काव्य शास्त्र का प्रमुख तत्व या प्राण तत्व मानते हैं। रीति संप्रदाय में भी यही बात है कि रीति को वो काव्य की आत्मा मानते हैं और अन्य तत्वों को गौण तत्व के रूप में मानते हैं। इसी तरह वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय के विषय में भी आचार्यों के विचार हैं। तो इस प्रकार से ये छह संप्रदाय है और ये छह संप्रदाय जो है इन छह संप्रदायों के ऊपर हम संप्रदाय क्रम अनुसार, जैसे कि रस संप्रदाय है तो उस रस संप्रदाय पर हम विचार रखेंगे, और उसके बाद अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, इन पर हम चर्चा करेंगे। और इनके जो चिंतक जो आचार्य हुए हैं, जैसे भरत मुनि, वामहा, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक और क्षेमेंद्र, इनके विषय में, तो इस प्रकार से ये एक इसकी पृष्ठभूमि है जो हमारी पहली इकाई है, प्रमुख काव्यशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांत। तो ये छह सिद्धांत या संप्रदाय काव्यशास्त्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और इन संप्रदायों का हम संप्रदाय वाइज संप्रदाय एक एक संप्रदाय को लेकर हम इनका एक एक ऑडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप इनको समझें और आप इनको सुनकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो अगला वीडियो रस संप्रदाय के ऊपर मैं तैयार करूँगा और वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो नमस्कार, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। समस्या ये है कि मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ नेटवर्क की भी बड़ी समस्या है, नेटवर्क नहीं मिलता है ठीक से, तो बड़ी समस्या होती है। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ नेटवर्क मिले वहाँ जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूँ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।